भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे बताएं, विस्तार के साथ बताएं कि वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि कैसी है। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष को लगाना चाहिए। पुलत्स्य जी बोले, हे राजन, बगीचे में वृक्षों को लगाने की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है उसके समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्वोच्च औषधि से मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही तथा अक्षत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्प की मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दें। वहां गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों की पृथक पृथक ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र तथा चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा कीजिए और रात में द्विज जातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास करवाएं। तदंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र पहनाएं। उसके मस्तक ऊपर के ऊपर सोने की कलगी लगाएं और सिंगों को सोने से मढ़ा दें। उसको दूहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करें। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच से छोड़े। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा वादन और बाजों के साथ मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेद की वरुण संबंधी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों को जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री वस्त्र, सैया, सैयोपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात 4थे दिन विशेष उत्सव करें। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दें। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय है वो ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करें। आचार्य को दूनी दक्षिणा दें तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपर्युक्त विधि से वृक्षारोपणों का उत्सव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है तथा वह अक्षय फल का भागी होता है। हे राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक वह स्वर्ग में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं अपने पहले और अपने पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है या पढ़ता है वह भी देवताओं के द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता के रूप में तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वालों को पिंड भी देते हैं। अतः भीष्म, तुम यत्नपूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ। वह अकेला ही तुम्हें 1,000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है, अशोक शोक का नाश करने वाला होता है। पाकड़ यज्ञ का फल प्रदान करने वाला होता है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जामुन का वृक्ष आपको कन्या या पुत्री देता है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है, पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य बहड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है। अंगोल अंकोल अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का तथा गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास होता है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद मोगरे में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेंत का वृक्ष लुटारों को भय प्रदान करने वाला होता है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य तथा लक्ष्मी प्रदान करने वाले होते हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। मोलशीरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला तथा स्त्रियों का पति होता है। दाग का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान कराने वाला होता है। केवड़ा शत्रु का नाश कराने वाला होता है। ताड़ का वृक्ष शत्रु संतान के शत्रु को नाश कराने वाला होता है। इस प्रकार अन्यान्य वृक्ष भी जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है यथा योग्य फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हे भीष्म, जो हजार पुत्रों का फल मिलता है वह अकेला ही तुम्हें पीपल के वृक्ष से लगाने से मिलता है।